अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आया तो वो मोहित हो गया। क्या मोह था उसका? कि वो जो स्थिति जैसी थी उसको वो ठीक उस तरह से समझ नहीं पाया। उसको ये पता था कि हम युद्ध करने के लिए आए हैं और हमारे सामने कौन खड़े होंगे ये भी उसको पता था, मगर जब उसने अपने सामने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखा तो उसको कुछ हो गया और उसके कारण, उस मोह के कारण, उस रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के कारण उसको शोक हो गया, दुखी हो गया और दुखी होके वो बैठ गया, रोने लगा। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रोने लगा। तो इमोशंस कितने पावरफुल होते हैं ये दिखाया गया। उसके बाद तो भगवान कृष्ण को कहता है कि मेरे को अभी जो है मोह है धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़, धर्म के बारे में मेरे को अभी ठीक समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। और भगवान समझ गए कि इसको शोक हुआ है और ये शोक जो है इसको अगर हम ये कहें कि तुम युद्ध करो तो ये करेगा युद्ध, मगर उसके मन में शोक बराबर लगा रहेगा, शोक नहीं जाएगा। हमारा कहना ये मान लेगा अर्जुन, मगर उसके भीतर जो शोक है वो शोक जाएगा नहीं। और भगवान जानते हैं कि शोक बिना आत्मज्ञान के नहीं जाएगा, इसलिए भगवान शुरू करते हैं आत्मज्ञान से। हालांकि अर्जुन का प्रश्न था कि मेरा कर्तव्य क्या, बस इतना बता दो। उसने तो ये निश्चित कर लिया था कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए भगवान जो है शुरू कर रहे हैं आत्मज्ञान से। क्या कहते हैं? असोचन अनवसोचः, कहते हैं 11वें श्लोक में कि तुम्हें तो शोक करना नहीं चाहिए, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो। भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य ये तो नित्य हैं, बराबर रहने वाले हैं, क्यों शोक करते हो? प्रज्ञा वादान से भाष से, और तुम जो है बुद्धिमान लोगों की तरह बातें करते हो और कर्म मूर्खों की तरह है। बातें तुमने बहुत बुद्धिमानी की मगर तुम्हारे कर्म रो रहे हो, ये बुद्धिमानी की बात है क्या? फिर कहते हैं गता सुन अगता सुन से नानु सोचंती पंडिता। पंडिता, पंडित कौन है? जिनके जिनको आत्मज्ञान है उसको पंडित कहा। यहां पर शंकराचार्य जी ने उसका वर्णन किया, जिसको आत्मज्ञान है वो पंडित है, पूजा करने वाला पंडित नहीं। जिसको आत्मज्ञान है वो पंडित है। उस पंडित को बोलते शोक नहीं होता। किस लिए शोक नहीं होता है? गतासून, जो चले गए, जो मर गए, उनके लिए भी उसको शोक नहीं है। अगतासून, जो मरे नहीं है, उनके लिए भी शोक नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, न तो एवाहम जातुनासम न तम ने में जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था कि हम पीछे, अपने पीछे हम जो है नहीं थे, तुम नहीं थे, या ये जितने भी ये राजा महाराजा लोग, महारथी लोग खड़े हैं, ये सब थे पिछले लाइफ में। न चैव न भविष्याम, ऐसा भी नहीं है कि फिर बाद में, ये मरने के बाद में फिर नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे वयम अतः परम, ये हमारा जो है मत, परम मत है। उत्तर काले अपि त्रिषु अपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण इति अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा के रूप में ये पहले थे, अभी ये हैं, मरने के बाद में फिर ये रहेंगे।
आत्मा अमर है,
आत्मा अमर है। उसके बाद में उन्होंने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे हमारे देह के अंदर में बाल्यावस्था होती है, उसके बाद फिर यौवन आता है, उसके बाद में फिर बुढ़ापा आता है, तो ये तीन अवस्थाएं एक साथ तो नहीं होती हैं। पहले बाल्यावस्था रहती है, बाल्यावस्था जब खत्म हो जाती है तो फिर यौवन आता है, तो एक अवस्था की मृत्यु हुई, दूसरी अवस्था का जन्म हुआ, फिर यौवन खत्म हुआ, यौवन की मृत्यु हुई, बुढ़ापा आया, तो अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मगर उसका अनुभव करता वो एक रहता है, अनुभव करता एक रहता, वो तो मरता नहीं है। ये तो हमारा, हमारी जो है अपनी, अपना अनुभव है ये। मगर कहते हैं धीर जो है वो देहांतर प्राप्ति, जब इस देह से दूसरी देह में जाता है, उस तब भी उसको मोह नहीं होता, उसको शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मालूम है कि जो आत्मा बाल्यावस्था को समझ रहा है, जो आत्मा यौवन अवस्था को देख रहा है, जो आत्मा बुढ़ापे को देख रहा है, वही आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर लेगा, इसलिए उसको इसके बारे में कोई मोह नहीं है। संभवतः अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा, आप तो भगवान आत्मा के बारे में कर रहे हो, हमको तो अभी सो करा है, इसकी बात बताओ अभी। तो भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि तुमको जो शोक हो रहा है वो क्यों हो रहा है? मात्रा, बोले ये इंद्रियां जो हैं, पांच आपकी ज्ञानेन्द्रियां जब पांच विषयों के साथ में स्पर्श करती हैं, जब मिलती हैं, तो बोलते हैं आपको शीतोष्ण सुख दुखदा दा, ये देने वाली हैं। जैसे ही आपकी ज्ञानेन्द्रियों के साथ में विषयों का संपर्क हुआ, बोले साथ साथ आपको या तो सुख होगा या दुख होगा, या शीत होगा या उष्ण होगा। अगर आपकी पसंद की चीज अगर हो गई तो आपको सुख मिला, और जिस चीज को आप पसंद नहीं करते वो दुख हो गया। तो ये देंगी। आगमा पाइनो अनित्या तांत तिचस्व भारत, आगमा ये आएंगी, आप रोक नहीं सकते हो, आएंगी। क्यों आएंगी? हमने देखा था क्यों आएंगी, सुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है, आपके कर्म। सुख कब होता है? जब आपने कर्म अच्छे किए होते हैं तब सुख होता है। दुख कब होता है? जब आपके कर्म ठीक नहीं होते हैं तो दुख होता है। तो अभी अगर आपको दुख होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? सुख हो रहा है तो इसका मतलब पीछे कर्म आपके अच्छे हुए हैं। तो ये आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्योंकि कर्म आपने कर लिया है, कर्म फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। कर्म फल किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। वो उचित समय में आपको कर्म फल देगा, कोई उसमें गलती नहीं होगी। आएंगे पाइनो, ये जाएंगे भी। क्यों भाई जाएंगे? क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म अनित्य है, किसी भी अनित्य कर्म का नित्य फल नहीं हो सकता, तो कर्म का फल भी उतना ही होगा। तो ये जाएंगे भी। तो अगर आप सुख अभी भोग कर रहे हैं, ये जाने वाला है, अगर दुख भोग कर रहे हैं वो भी जाने वाला है। क्यों? बोले अनित्य। तान तितिच्छस भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तुम उसको सहन करो। अच्छा देखो, यहां एक चीज आपको समझने की है, ये समझने की चीज है कि अगर स्थिति आई है तो ये मत सोच के बैठ जाओ मेरा कर्म फल, अब नहीं कुछ करना, बैठ जाओ तुझसे। बुखार आ गया, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मेरा कर्म फल है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो है अगर स्थिति को संभाल सकते हो, उसको सुधार सकते हो, तो जरूर उठा प्रयत्न करो। और अगर नहीं सुधार सकते तब सहन करो। अब रोग अगर आपके शरीर में ऐसा है कि जिसका क्योर नहीं है, देन इंड्योर, और कोई उपाय नहीं है। रोने से आपका रोग जाने वाला नहीं है, दुखी होके भी आपका रोग नहीं जाएगा। उसके लिए भगवान ने कहा, होई सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो राम जी ने ठीक करके रखा हुआ है। भगवान ने जो ठीक करके रखा वो होगा। अगर आप ऐसा कर सके, आपने सहन किया, क्यों सहन करें, पहला प्रश्न आएगा, क्यों सहन करें, क्या मिलेगा हमें? तो उसमें कहते हैं, यम ही ने व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषार्थभर सम दुख सुखम धीरन सो अमृतत्वाय कल्पते। बोले जो समता रखता है ना, जब सुख आता है तो उछलता नहीं है, जब दुख आता है तो अब साथ में नहीं जाता। देखो, सुख आने से किसी को दुख नहीं होता है, सुख में बड़ा सबको आनंद होता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब दुख आता है। दुख आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? बोले एक तो आपको हो सकता है अवसाद आ गया। अवसाद किसको कहते हैं? हिंदी वर्ड है, डिप्रेशन को। दुख आया तो आपको अवसाद हो गया, दुख आया आप बात करना बंद कर दिए, घर में कोई मित्र आता है तो आप चुप, बात बंद। या और आप क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा दुख है, सहन नहीं होता है, तो आप सोचते हैं चलो आत्महत्या कर लो। देखो आत्महत्या भी जो है ना, सुख के लिए आदमी कर रहा है। देखो, इस दुख से छुटकारा हो जाए इसलिए आत्महत्या करना चाहता है। उसका एम क्या है? बोला सुख मिल जाएगा, आत्महत्या करने के बाद सुख मिल जाएगा, इसलिए आत्महत्या कर लो। दुख के अंदर जो है मन जो है बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। मगर धीर कैसा है? बोले धीर ऐसा है कि उसको दुख है या सुख है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लाइट हाउस है, लाइट हाउस में इतनी लहरें आती हैं, छोटी बड़ी आती हैं, तो लाइट हाउस कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो धीर कौन है? बोले धीर वो है जो सुख दुख में सम रहता है। इसलिए उन्होंने कहा, सम दुख सुखम धीरन सो अमृतत्वाय कल्पते। अगर आप सम हो गए सुख दुख में तो क्या हो जाएगा? अमृतत्वाय कल्पते। अमृताय कल्पते, यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, अमृत भावाय मोक्षाय समर्थो भवती। आप मोक्ष के लिए क्वालिफाइड हो गए, समर्थ हो गए। अगर आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, सम रख लिया, तो इसके लिए आपको लाभ ये होगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सुविधा हो जाएगी। कालिदास जी ने कुमार संभव में धीर की एक डिफिनीशन दी है, बहुत अच्छी परिभाषा है। विकार हेतु सती ये शाम न चेतांसी विकृते ते एव धीरा। धीर कौन है? बोले कि दुख होने का सब कुछ हेतु है, सब कारण है। विकार हेतु सती ये शाम, परिस्थिति ऐसी है कि आप दुखी हो। न चेतांसी विक्रियते, मगर उसके मन में कोई विक्रिया नहीं होती है, कोई दुख का भाव नहीं आता है। तो बोलते हैं ते एव धीरा, वो धीर है। बहुत अच्छा। तो एक आपका उपाय है दुख से बचने का, वो क्या है? अगर आप सम बन जाओ तो आप तो है दुख से छूट सकते हो। अब भगवान एक दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, उस उपाय के हिसाब से वो कहते हैं दुख है ही नहीं। इसको आपको बड़ी अच्छी तरह से समझना है। वो समझ लोगे तो आपके दुख सारे खत्म हो जाएंगे। क्या है वो दूसरा उपाय?
नासतो विद्यते भावः,
नासतो विद्यते भावः,
न भावो विद्यते सतः,
न भावो विद्यते सतः,
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः,
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः,
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः,
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, नासतो विद्यते भावः,
न भावो विद्यते सतः,
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः,
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
न असतो विद्यते भावः, असत जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका प्रेजेंस ही नहीं है, असत का कोई प्रेजेंस ही नहीं है। न असतो विद्यते भावः, और न अभावो विद्यते सतः, और सत का अभाव नहीं होता, असत है ही नहीं, एक नंबर। दूसरा, सत्य का कभी प्रेजेंस खत्म नहीं होता, एब्सेंस ऑफ सत कभी नहीं होगा, सत का अभाव कभी नहीं होगा। उभयो रूपी दृष्टः, इन दोनों का, असत है ही नहीं और सत कभी खत्म नहीं होता, ये दो चीजें जो है उभयोरपी दृष्टः अंतः, अंतः मतलब इसका अंत जो है, उसका गोल जो है, उसका जो मतलब है, ये पता है किसको? तत्वदर्शी भी, जो तत्व का दर्शन करता है उसको पता है। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, सत का मतलब क्या होता है, असत का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। सत किसको कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा है जो तीनों कालों में रहता है उसको हम सत कहते हैं। तीन काल का मतलब क्या है? जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में रहता है उसको हम सत कहेंगे। अब आप हमको बताइए, दुनिया की कोई ऐसी चीज जो तीनों कालों में रहती है, है कोई चीज आपको नजर आती है जो तीनों कालों में रहती है? कोई भी चीज नहीं है। केवल एक छोड़ के, वो क्या है? वो आपका आत्मन या ब्रह्मन है, जिस आत्मा की बात भगवान कह रहे हैं कि आत्मा पीछे भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। असत क्या है? असत किसको कहते हैं? सत अगर वो वस्तु है जो तीनों कालों में रहती है, तो असत का मतलब उसका उल्टा। उसका उल्टा क्या हुआ? जो तीनों कालों में नहीं है। जैसे हमारे सिंह दिखाई पड़ते हैं? नहीं है, तीनों कालों में नहीं है, असत। और जो एक काल रहता है उसको क्या कहते हैं? अब एक चीज हुई जो तीनों कालों में है, दूसरी हुई असत जो तीनों कालों में नहीं है, मगर ये टेबल, ये मेरा देह, ये सारी दुनिया, क्या हम इसको सत कहेंगे? ये तीन काल में है, क्रिएशन के पहले ये सारी सृष्टि नहीं थी, प्रलय के बाद में ये सृष्टि नहीं रहेगी, तो क्या हम इसको सत कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या हम इसको असत कह सकते हैं? नहीं, पीछे नहीं था मालूम है मेरे को, बाद में प्रलय के बाद नहीं रहेगा ये भी नहीं पता, अभी तो है, तो ये असत भी नहीं हुआ। तो जो चीज सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या हुआ? इल्यूशन, मिथ्या, वो इल्यूशन है, वही माया है। बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये देखो, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था और सुप्सुप्ति अवस्था ये रोज बदलती है ना, रोज बदलती है। तो ये क्या है, सत है नहीं? रहती है क्या जागृत अवस्था 365 दिन तक कंटिन्यूअसली? नहीं रहती है। सुसुप्ति स्वप्नावस्था, ना तो हम इसको सत कह सकते हैं क्योंकि 3 पीरियड ऑफ टाइम में नहीं है। क्या हम इसे असत कह सकते हैं कि ये नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अर्जुन की क्या परिस्थिति है? अर्जुन माया में फंसा हुआ है, उसको सत और असत का ज्ञान नहीं है। हम सबको भी सत और असत का ज्ञान नहीं है। जिस दिन सत और असत का ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमारे सारे शोक चले जाएंगे। बहुत अच्छा। तो यहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि शीत उष्ण वास्तव में अविद्यमान शीतोष्णादि और उनके कारणों का भाव होनापन अर्थात अस्तित्व है ही नहीं। बोलते हैं शीत उष्ण आदि सुख दुख आदि उनके कारण सहित है ही नहीं, खत्म। पहले उपाय में क्या था? पहले उपाय में था कि ठीक है आप जो है सिचुएशन बदली कर सकते हो तो कर लो, नहीं बदल सकते हो तो इंड्योर करो, ये बाहर की परिस्थिति। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि शीतोष्ण सुख दुख और उसका कारण, अच्छा कारण हम लोगों ने देखा था, कारण क्या है हमारे दुख का? अनात्म वस्तुएं। हमारे दुख का कारण क्या है? सब अनात्म वस्तुएं हैं, क्योंकि आत्मा दुख दे सकता है क्या? उसका नाम क्या आत्मा का? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद कभी दुख देगा क्या? फिर तो नाम बदली करना होगा उसका। और हम लोगों ने देखा है कि संसार में केवल दो चीजें हैं, एक आत्मा है दूसरी आत्मा है। अगर आत्मा आपको दुख नहीं दे सकता तो कौन देता है? आत्मा दे सकता। तो दुख और अनात्म वस्तुएं शंकराचार्य जी कहते हैं है ही नहीं। चल कैसे करें भाई? तो बोलते हैं कि आप इंक्वायरी करना शुरू करो, जरा इसके अंदर सोचो। बोले सुख दुख क्या है? बोले ये केवल एक सेंसेशन है, एक संवेदना है, दैट्स ऑल। सुख दुख क्या है? केवल यहां पर एक संवेदना है बस, और कुछ नहीं है, सेंसेशन है। कैसे हुआ भाई? बोले जब हमारी ये ज्ञानेंद्रियां जब सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में मिलती हैं तब सुख दुख होता है ना? अच्छा ज्ञानेंद्रियां और आपके सेंस ऑब्जेक्ट किससे बने हुए हैं? पंच महाभूत से बने हुए हैं। पंच महाभूत सारे के सारे जड़ हैं, इनर्ट हैं। जड़ किसको कहते हैं? जो ना अपने को जानता है ना दूसरे किसी को जानता है। जैसे पत्थर, पत्थर अपने आप को नहीं जानता कि मैं पत्थर हूं। पत्थर को यह भी नहीं पता लगता कि मेरे बगल से कौन चला गया, वो जड़ है। अब ये बताओ जड़ पदार्थ आपको सुख दुख दे सकता है क्या? जड़ पदार्थ सुख दुख नहीं दे सकता आपको। बहुत अच्छा। फिर दुख हमको अनात्म वस्तु से आ रहा है और अनात्म वस्तु सारी की सारी विकारी हैं, सारी की सारी चेंज होती हैं, सारी की सारी जो है नाशवान है। तो एक नियम है, ये नियम बराबर याद रखना, सारी जिंदगी काम देगा ये। यद दृश्यम तद जड़म, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो जड़ है। अगर सूर्य आपको दिखाई पड़ता है जड़ है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है जड़ है, तारे दिखाई पड़ते हैं जड़ है, टेबल दिखाई पड़ता है तो जड़ है, शरीर दिखाई पड़ता है तो जड़ है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो जड़ है, और जो जड़ है वो नाशवान है। सो जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब का सब जड़ है, इनर्ट। और जो जड़ है वो नाशवान है, और जो नाशवान है वो मिथ्या है। मिथ्या मतलब, मिथ्या की हम लोगों ने डिफिनेशन देखी थी ना, मिथ्या मतलब जो एक काल में है वो मिथ्या है, वो मिथ्या है, और जो मिथ्या है वो असत है, वो नहीं किया। अब एक उदाहरण देते हैं। रमन महर्षि के पास में लोग जाते थे, पूछते थे कि मैं दुखी हूं, बोलते हैं इंक्वायर कौन दुखी है, तो बोलते हैं दुखी तो मेरा मन दुखी है। बोले और थोड़ा सोचो, बोले मेरा अहंकार दुखी है, ईगो वो दुखी है। बोले और खोज करो, खोज करने से पता लगेगा कि ईगो ही नहीं है। विनय जी कल हमें पूछने वाले हैं, परसों, मन ही नहीं है, उपदेश सार का प्रश्न है उनका, तो मन ही नहीं है। तो बोला हाँ मन ही नहीं है, दुखी कौन हो रहा है। बोला आत्मा तो कभी दुखी होता नहीं, तुम कौन हो, तुम मन हो कि आत्मा हो, तो मन तो है ही नहीं, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण लेते हैं, शीतोष्ण वगैरह सुख दुख जो है ना, सारे मॉडिफिकेशंस है, विकार इसको कहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे एक मिट्टी से हमने एक घट बनाया, घट आप समझते हो ना, पॉट, एक पॉट बनाया मिट्टी से, उस पॉट को हम बना के या तो हम सन ड्राई कर लेंगे, नहीं तो उसको आग में सेक के उसको हम पक्का बना लेंगे। एक कच्चा घड़ा होता है, एक पक्का घड़ा होता है। अब वो कच्चा घड़ा हो या पक्का घड़ा हो, वो व्यवहार में आता है काम, उसके अंदर पानी डाल सकते हो, उसमें चीजें रख सकते हो। तो वो किस चीज से बना हुआ है, मिट्टी का है। और थोड़ा सा आगे चलें, उस घड़े को छुओगे तो क्या छुओगे, मिट्टी को छुओगे, तो उसको सूंघोगे तो किसकी सुगंध आएगी, उसको खाओगे तो क्या होगा, उसको टन टन शब्द करोगे तो किसका है, मिट्टी का है ना। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच ज्ञानेंद्रियों से उसको अगर पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, मिलेगी ना। एक स्टेप और आगे चलते हैं, उसमें से अगर मिट्टी निकाल देंगे तो आप हमको घट दिखा सकते हैं। अगर हमने मिट्टी उसमें से निकाल दी तो क्या आप मेरे को उस घट का रूप या उसका वेट दिखा सकते हैं, तो नाम रूप असत हुआ ना, हो गया ना, नाम रूप विकारी है। घट बनने के पहले मिट्टी था, मिट्टी में थोड़ा सा विकार किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको हमने पॉट बनाया, पॉट को तोड़ दिया, फिर मिट्टी बन गया। तो जो नाम रूप बना था, नाम रूप विनाशवान है। अब वो नाम रूप यहां पर कहते हैं कि वो मिथ्या है, वो असत है ही नहीं नाम रूप। अगर मिट्टी निकाल लें उसमें से तो नाम रूप दिखा दोगे हमें, घड़े में से अगर हम मिट्टी निकाल दें तो आप दिखा सकते हो, आपके इयर रिंग से, आपके बैंगल से, आपके हार से अगर सोना निकाल लें तो क्या आप मेरे को हार का शेप, बैंगल का शेप या इयर रिंग का शेप दिखा सकते हो, इसलिए वो नाम रूप है ही नहीं, असत हो गया। बहुत खूब, इसके बाद अगर कारण कार्य कॉज एंड इफेक्ट अगर इफेक्ट नहीं है तो हम तो संसार में देखते हैं हर इफेक्ट का एक कॉज है, वो कॉज का फिर एक और कॉज है, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का फर्नीचर है, उसका कॉज क्या है, लकड़ी है, लकड़ी का कॉज क्या है, पेड़ का कॉज क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का कॉज क्या है, पानी है, क्योंकि पानी से पृथ्वी आई है, पानी का कॉज क्या है, फायर से पानी आया है, फायर का कॉज क्या है, वायु, वायु का कॉज आकाश, आकाश का कॉज ब्रह्म, हो गया ना, सब में कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट है। अगर आप कहते हो कि सारे के सारे इफेक्ट जो हैं वो अगर सारे के सारे मिथ्या हैं, असत हैं, तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि सबको बाधित करते 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 सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर हम सबको हटाते जाएं, हटाते जाएं, सब असत है ही नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले जब भी कोई आप कुछ देखते हो ना तो उसमें दो बुद्धि होती है, दो किस्म की बुद्धि होती है, सर्वत्र बुद्धि उपलब्ध है, सद्बुद्धि असत बुद्धि इति, हर जगह आपको एक सत बुद्धि मिलेगी, एक असत बुद्धि मिलेगी। अब सत असत की डिफिनीशन दे रहे हैं शंकराचार्य जी, आप ध्यान से उसको पकड़ लो। वो कहते हैं कि यद विषया बुद्धि न व्यभिचरती तत्सत, जिस विषय के बारे में आपकी बुद्धि में मॉडिफिकेशन नहीं होता है, न व्यभिचरती विकार नहीं होता है, जो बदलता नहीं है, वो सत है। और जिसके बारे में यद विषया बुद्धि व्यभिचरती तद असत, जिसके बारे में बुद्धि आपकी बदलती रहती है, विकार होता रहता है, वो असत है। फिर अपने घड़े पर चले जाएं, घट, एक घट है, इसको घट मान लेते हैं, स्टील की प्लेट को, ये घट है। तो जैसे ही हम घट देखते हैं तो ये क्या कहते हैं, घट है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक घट है और दूसरा है, समझा दो चीजें क्या क्या है, एक घट है, घट है, तो घट एक चीज हो गई, है ये दूसरी चीज हो गई। जो है उसको हम सद्बुद्धि कहेंगे और जो घट है उसको हम असत कहेंगे, क्योंकि नाम रूप असत है। अब ये नाम रूप टूट गया, घट टूट गया, तो घट बुद्धि तो नष्ट हो गई, मगर है पना क्या नष्ट हुआ, क्यों नहीं नष्ट हुआ, कैसे प्रूव करोगे नष्ट हुआ है?
अब नहीं है,
घट नहीं है, है पना है कि नहीं ये बताओ, एग्जिस्टेंस है, क्यों है, गिलास है, घट टूट गया, घट बुद्धि चली गई, मगर है बुद्धि, गिलास है, टेबल है, सूर्य है, चंद्र है, ये तो है। अगर है पना भी इसका अगर टूट जाता तो ये है जितने भी है सब खत्म हो जाते, मगर वो नहीं हुए, केवल घट बुद्धि जो है खत्म हुई, उसमें केवल विकार हुआ, है पने में विकार नहीं हुआ। है पने का मतलब एग्जिस्टेंस, घट मरता है, एग्जिस्टेंस नहीं मरता है, बहुत अच्छा। अब जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ है, पेड़ को काट दिया, पेड़ चला गया, अब उसको लॉग हो गया ना, जब जमीन पर गिर गया तब क्या बोलेंगे, लॉग है, लॉग को काट दिया, लॉग खत्म हो गया, अब क्या, प्लैंक है, प्लैंक को काट के फर्नीचर बना दिया, प्लैंक खत्म हो गया, मगर है पना देखो चलता जा रहा है, फर्नीचर है, फर्नीचर को जला दिया, राख है, राख को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी है। नाम रूप बदलते गए, है पना नहीं बदला। तो हमने देख लिया यद दृश्यम तद जड़म तत् नस्वरम तत् मिथ्या तत् असत, नहीं है। है ही नहीं ये वो। बहुत अच्छा। अब जितने भी हमारे अनुभव होते हैं ना उसको हम लोग त्रिपुटी कहते हैं। त्रिपुटी, त्रिपुटी क्या है? कर्ता, कर्म और विषय। कर्ता, कर्म और विषय। मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, मैं कर्ता, रसगुल्ला विषय, खाने की प्रक्रिया उसको क्रिया कहते हैं, इसको त्रिपुटी कहते हैं शास्त्र में। कर्ता, कर्म और विषय, त्रिपुटी। यह त्रिपुटी बदलती है, यह त्रिपुटी बदलती रहती है। कर्ता बदलता रहता है, अरे कर्ता भी बदलता है, बोला हां कर्ता बदलता है। कैसे बदलता है भाई? देखो आप लोग अब सब बैठे हो ना, अभी आप लोग श्रोता हो हैं? आप घर में जाओगे, कोई पत्नी बन जाएगा, कोई माता बन जाएगी, कोई मामी बनेगी, कोई चाची बन गया ना, चेंज हो गया ना कर्ता। कल ऑफिस में आप जाओगे तो क्या बन जाओगे? ऑफिसर बन जाओगे। आप टेनिस खेलने जाओगे, टेनिस प्लेयर हो गए। अब कुछ दिन बाद प्रवचन दोगे तो आचार्य बन जाओगे। देखो कर्ता बदल रहा है ना, कर्ता बदल रहा है, विषय भी बदलते रहते हैं। तो जितनी भी बदलने वाली चीजें हैं वो कहते हैं कि सारी की सारी असत है। जिसमें व्यभिचार हो रहा है, जिसमें विकार हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें असत हैं। असत की परिभाषा क्या बताई? जिसमें जिसमें विचार हो रहा है, विकार हो रहा है, वो सारी की सारी असत हैं, है ही नहीं। और इनको जो प्रकाशक है वो नित्य है। कर्ता, क्रिया और विषय को जो प्रकाशक है, जो शक्ति देता है, जिसके कारण जो है कर्ता, क्रिया, कर्म, विषय ये सब काम करते हैं, त्रिपुटी चलती रहती है, वो जो है वो नित्य है। तो बोलते हैं अगर इसको आप जान लो, सत और असत का भेद जान लो। सत असत का भेद अर्जुन को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता, मगर आपको अगर ये पता लग जाए कि केवल एक वस्तु सत है, बाकी की सारी चीजें असत है। अच्छा एक और सीधे तरीके से आपको समझाते हैं, अगर ये आपको कठिन लगता हो तो। एक महात्मा ने कहा, मान लो आपकी उम्र हो 25-30 साल या ज्यादा भी हो, कोई हर्जा नहीं है, आपने विवाह नहीं किया, अविवाहित हो आप, अनमैरिड जिसको कहते हैं, ठीक है, आप अनमैरिड हो, आपने स्वप्न देखा, आपने स्वप्न देखा कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद में एक बच्चा बीमार हो गया, वो रोने लगा, उसके रोने के कारण आपकी नींद खुल गई, खुलने के बाद में अब बताओ आपको बीबी बच्चे मिलेंगे? मिलेंगे क्या? नहीं। अच्छा जागने पर आप विवाहित हो कि अविवाहित हो? अनमैरिड हो ना। ड्रीम के पहले अनमैरिड, ड्रीम के बाद, ड्यूरिंग द ड्रीम पीरियड, व्हाइल यू आर सीइंग द ड्रीम, व्हेन यू कम आउट ऑफ द ड्रीम। तो जो चीज पहले नहीं थी, जो बाद में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। हुआ? मिथ्या किसको कहते हैं? जो एक काल पहले नहीं था, बाद में नहीं है, बीच में एक पीरियड में है, तो इस मिथ्या को हम असत कहते हैं, है ही नहीं। तो कारण ही नहीं है तो फिर दोष दुख कहां से होगा? सारा का सारा जगत मिथ्या है। मगर जब तक आप स्वप्न देख रहे थे तब तक आपका विवाह पक्का था, हैप्पीली मैरिड थे। कब आपको पता लगा कि वो मिथ्या है? आपका विवाह नहीं हुआ, वो विवाह स्वप्न का विवाह मिथ्या कब पता लगा? जब आप जागे। तो ये आपकी अभी जागृत अवस्था क्या है? हमारे शास्त्र के हिसाब से ये भी एक स्वप्न है। ये आपका 100 साल का स्वप्न है। अगर 100 साल आगे जीवित रहोगे तो ये आपका 100 साल का ड्रीम है। और इस 100 साल के ड्रीम के अंदर में एक और ड्रीम देखते हैं। अगर ये 100 साल का ड्रीम नंबर 1 है तो इसके भीतर जो दूसरा ड्रीम देख रहे हैं वो ड्रीम नंबर 2 है। और उस ड्रीम नंबर 2 में जो हमने विवाह किया था वो जब ड्रीम नंबर 1 में वापस आते हैं तब हम कहते हैं कि ड्रीम नंबर 2 का विवाह नहीं हुआ। अब ये ड्रीम नंबर 1 से अगर हम वापस निकल आए फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे ना ड्रीम नंबर 1 भी फॉल्स है, कहेंगे ना ये मिथ्या है। तो ये कैसा है? बोले तत्वदर्शी उभयोरोपी, ये दोनों को जानते हैं, सत को भी जानते हैं असत को भी जानते हैं। जो तत्वदर्शी हैं, तत्व मतलब क्या हुआ? तत्व मतलब दैट, और त्व उसका मतलब होता है इसेंस। जो उस तत्व के इसेंस को जानते हैं, जो ब्रह्मन के इसेंस को जानते हैं, उसको हम कहते हैं तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी जो है वो दोनों को ही जानते हैं। तो सीत उसने किस तरह के कहे हैं? बोले मरीचिका की तरह है। मरीचिका मिराज की तरह है। मिराज में क्या होता है? क्या आप सोचते हैं वहां पानी है? आप दौड़ते हो, चलो पानी पियेंगे, वहां जाके नहा लेंगे। जितना आगे दौड़ते हो उतना उतना वो मरीचिका दौड़ता रहता आगे। मगर जिस समय आपको ज्ञान हो जाता है कि यहां तो पानी है नहीं, तो उसके बाद में फिर क्या दौड़ोगे उस पानी के लिए आप? तो जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये सारा का सारा जगत मिथ्या है, इसमें सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है, अब मेरे को बताओ आप सुख दुखी होगे? नहीं होगे। ज्ञान होने से ही दुख खत्म हो जाएगा। और क्लासिक एग्जांपल, रस्सी के ऊपर सर्प देखना। आपके रास्ते में कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है, प्रकाश पूरा नहीं है, और आपने उसको समझा कि ये रस्सी नहीं है, ये एक सांप है, और उसके अंदर आपको सांप की आंख नजर आ रही है, उसकी जीभ नजर आ रही है, उसका हुड नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, और लगता है कि अब ये आपको काट भी देगा। आप दुखी हो रहे हो, आप भयभीत हो रहे हो, दुख हो रहा है आपको। अब बताओ उस सांप को लाठी से मारने से कुछ होगा? वो सांप नहीं मरेगा। अगर कोई आपको ज्ञान दे दे, उसका कोई टॉर्च जला के दिखा दे कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, तो सांप से जो भय हो रहा था वो रहेगा क्या? खत्म हो गया, सांप का भय खत्म हो गया। उसी तरह से अगर आपको कोई ये दिखा दे कि ये सारा का सारा जगत जो नाम रूप आपको दिखाई पड़ रहा है वो सारा का सारा असत है ही नहीं वो, फिर आपको तकलीफ होगी क्या? फिर सुख दुख होगा? नहीं होगा। मगर हम क्या करते हैं? हमारी गलती कहाँ है? हमारी गलती है, हम कहते हैं कि नहीं हमें तो दिखाई पड़ता है। भगवान अर्जुन को बहुत ऊंची ले जाके उसको ऊपर से दृष्टि दिखा रहे हैं कि देखो ये है ही नहीं, तुम जिसके बारे में शोक कर रहे हो वो सब तो अनात्म वस्तु है, वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है यहां पर। तो सारे ऑब्जेक्ट, सारे विषय, सेंसेस और जितने भी कुछ है, हमारा शरीर आदि सब कुछ के सब असत हैं। यद दृश्यम तद जड़म तद नश्वरम तद मिथ्या तद असत। देखो असत वाला पोर्शन पकड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, आज हम पूरा एक घंटा इसी असत के ऊपर लगा रहे हैं ताकि आप एक बार पकड़ लें। अगर पकड़ में आ गया तो दुख जो है सारे खत्म हो जाएंगे, मगर हम तो कहते हैं नहीं, हमको तो वर्ड नजर आ रहा है, असत कैसे है, असत नहीं हो सकता ये। तो क्या आप जो कुछ भी देखते हैं वो क्या सब सत्य है? आपको आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्या वो नीला है, सत्य है वो? आपको पृथ्वी जो है फ्लैट नजर आती है और चलती हुई नजर नहीं आती है, मूव करती नजर नहीं आती है, क्या ये सत्य है? आपको सूर्योदय सूर्यास्त नजर आता है, क्या वो सत्य है? आप घूम रहे हो कि सूर्य घूम रहा है, कौन सा सत्य है? आपको इलेक्ट्रिसिटी इंजन नजर नहीं आती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? सब है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको ये ज्ञान चाहिए कि सत का कभी अभाव नहीं होता और असत है ही नहीं। न असतो विद्यते भावा, असत तो है ही नहीं, भगवान भी कह रहे हैं। देखो यहां पर जो बताया भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करो, ये वेद उपनिषद कह रहा है, ये कोई पुराण नहीं कह रहा है, ये स्टोरी नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। बहुत अच्छा, मगर हम क्या करते हैं, हम जो है अपने प्रॉब्लम्स को महत्व देते हैं, उसको रियलिटी देते हैं, उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। प्रॉब्लम ही नहीं है ये, हम कभी सोचते ही नहीं है। हमने राई को जो है माउंटेन समझा हुआ, पहाड़ समझा हुआ है, उसको रियलिटी दे 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 के हमने ऐसा किया हुआ है। शंकराचार्य जी कहते हैं भाई ठीक है, आप मानते हो ऐसा ना, हमने जो कहा है उसके बारे में आप सोचो, आप उसके ऊपर टेस्ट करो, लिटमस टेस्ट लगाओ, वेदर इट इज व्यभचरती और नॉट, ये बदलता है कि नहीं बदलता है? अगर ये बदलता है तो असत है, और अगर ये नहीं बदलता है तो सत है। ये बराबर आप याद रखना, जब भी कुछ आपको दुख आए प्रश्न कीजिए, ये बदलने वाला है कि नहीं है? अगर बदलने वाला है तो ये है ही नहीं। और जो बदलने वाला नहीं है वो सत है, वो बराबर रहेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमको उस तत्व तक अगर पहुंचना है तो क्या करना होगा? उस सत तक पहुंचना है। कहते हैं कि सारी संसार की वृत्तियों माइंड में है, जो भी संसार है ना आपका, वो सारा का सारा संसार जो है वो मन ही संसार बना हुआ है। मन जहां बंद होता है संसार खत्म हो गया, जहां आप सो जाते हो संसार रहता है, फिर आपको नजर आता है नहीं, जब तक जागते हो तब तक संसार है। तो बोले संसार को वृत्तियों में डालो, वृत्तियों को मन में लय करो, और मन को उस आत्मा में, उस सत में लय कर दो, तो आप सत तक पहुंच गए। ठीक है, मगर हमारा जो है व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य क्या है? देखो पारमार्थिक सत्य बोल के केवल एक सत्य है, और व्यवहारिक सत्य एक काल के लिए केवल व्यवहार हम उससे करते हैं, इसलिए उसको हम व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। और एक प्रातिभाषिक सत्य है, प्रातिभाषिक सत्य अपीयरेंस ओनली। तो इस सारा का संसार, जितना भी संसार है, ये सारा का सारा केवल अपीयरेंस है और कुछ नहीं है, प्रतिभासिक है, केवल भासमान है, इट्स ओनली अपीयरेंस, इट्स इल्यूशन, मिरीचिका की तरह केवल है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपनी ड्यूटी करो, ये शोक मोह सब जो है वो चला जाएगा, कुछ करने का नहीं है। ये सारा का सारा अनित्य है। तो बोलते फिर नित्य क्या है, आपने तो ये बता दिया सारा का संसार अनित्य है, तो नित्य भी बताइए। भगवान नित्य जो है अगले श्लोक में बताते हैं, 17वां श्लोक, नित्य क्या है।
अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी किसको जानो, बोले सत क्या चीज है, बोले सत अविनाशी है। कौन है वो भाई, येन सर्वमिदं ततम्, जिसके द्वारा ये सारा का सारा संसार व्याप्त है। ततम का मतलब परवेश, व्याप्त है। विनाशम अव्ययश्च, बोले इसका विनाश जो अव्यय है, न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी इसका नहीं कर सकता विनाश। तो सत एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है। अब आप कहोगे व्याप्त हमारे हिसाब से तो पंच महाभूत से सारा व्याप्त है, हमने पढ़ा है, आप लोगों ने बताया बार बार, शरीर भी पंच महाभूत से बना है, 14 लोग भी पंच महाभूत से बने हुए हैं, तो सारा संसार पंच महाभूत से व्याप्त है, तो इसलिए पंच महाभूत सत हुए। नहीं, सत नहीं हुए। फिर उसके बाद हम आपको दूसरा स्टेप बताएंगे। दूसरा स्टेप ये है कि वो संसार को आप कैसे देखते हो, पंच महाभूत का बना हुआ ब्रह्मांड कैसे नजर आता है। बोले सेंस ऑर्गन्स जाते हैं, उसके साथ में माइंड जाता है, और ये माइंड सारे संसार को व्याप्त करता है, इसलिए माइंड सत है। हम बोलेंगे नहीं, माइंड भी सत नहीं है, क्योंकि माइंड की वृत्तियां भी देखी जाती हैं। अभी हमको क्रोध आ रहा है, अभी हमको नींद आ रही है, नजर आता है। तो अगर वो नजर आता है तो क्या हुआ, वो दृश्यम। अभी आपको रूल हमने बताया था, याद रखना, यद दृश्यम तद जड़म तद नश्वरम तद मिथ्या तद असत, खत्म। तो माइंड की वृत्तियां अगर आपको नजर आती है कि नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो वो सारा का सारा क्या हुआ, जड़ हुआ। जो जड़ है वो नाशवान है, जो नाशवान है वो मिथ्या है, जो मिथ्या है ही नहीं। अब बताओ ये फॉर्मूला आपको अगर मिल गया और आपने पकड़ लिया, अब बताओ आपका शोक मोह है। दो तरीके भगवान ने बताए। पहला तरीका था आप समता रखो, समता रखोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आपको आपकी चाहत की चीज मिल गई, बोले आप उछलो नहीं, सम रहो। आपको जो चीज चाहिए थी मिली नहीं, दुखी मत रहो, फिर सम रहो। ऐसा अगर समता बनी रही तो आपको मुक्ति के हो जाओगे। बोले अच्छा चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं आपको, थोड़ा सा और विवेक करो। क्या विवेक, बोले सारा का सारा असत है। सत किसको कहते हैं, असत किसको कहते हैं, जो तीनों कालों में नहीं है, असत। भगवान असत वर्ड यूज कर रहे हैं। जितनी अनात्म वस्तुएं हैं भगवान के हिसाब से सारी की सारी असत। क्यों असत हैं, क्योंकि इनके बारे में बुद्धि बदलती रहती है, बुद्धि बदलती रहती है। घट टूट गया मगर है नहीं टूटा, है पना चालू रहता है, चलता रहता है। वो है पना, वो एग्जिस्टेंस, वो सत है। और बाकी जितने भी नाम रूप हैं घट के हिसाब से, सारे दुनिया का नाम रूप ले लो। घट तो पौट तो एक एग्जाम्पल है, हम सब नाम रूप हैं, एक एक रूप का एक एक नाम है। तो जितने भी नाम रूप हैं बोले सबके सब असत हैं। ये ज्ञान की दृष्टि है, व्यवहार की दृष्टि में ऐसा नहीं कर देना कुछ भी नहीं है। चलो इसको और हम लोग देखेंगे, इसमें और भी देखने का है, नित्य वस्तु क्या है इसको देखेंगे। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 हरे।